ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में प्रवचन के सत्र में हम लोग चार दिन के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी इसके बाद दूसरे कोई संत आएंगे तो आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। स्वाध्याय के सत्र में आप लोग गीता जी का श्रवण कर ही रहे हैं, जो कर रहे होंगे। अब इस चार दिनों में मेरे मन में विषय का संकल्प आया क्या लेवें। तो एक तो जो ग्रंथ मेरा पूर्व काल से चल रहा है, या तो कहो वही ले लूं, या चार दिन के लिए एक उपदेश षोडशी, एक है ग्रंथ बोध सार, ज्ञान का पूरा सार है, उसमें निचोग रूप से 16 श्लोक दिए हैं। उपदेश षोडशी, उपदेश के 16 श्लोक हैं, या कहो ये ले लूं, आप बताओ क्या ले लूं। या तो ये लेवे जो चल रहा है पहले से प्रबोध सुधाकर, अथवा ये उपदेश षोडशी ले लूं। सबकी इच्छा है उपदेश षोडशी लेने की। चलो ठीक है, चलो ये हो गया अवसान है। देखो हम लोग, देखो हमारे आज हम लोग विकसित बहुत हो गए हैं। सच बताऊं मनोरंजन के हजार साधन उपलब्ध हो गए हैं। अभी ऐसे ही एक दिन मैं घूम रहा था, महाराज जी से चर्चा हो रही थी, हम कहा महाराज जी उस समय विद्वता पहले वाली विद्वता रह नहीं गई है। पहले लोग चाहे वाल्मीकि रामायण होवे, चाहे योग वशिष्ठ होवे, अथवा इतने पुराण लिखे गए, कितने बड़े विद्वान लोग रहे होंगे, उनका कितना बड़ा चिंतन रहा होगा। हम तो यहां तक कहते हैं कि और पूर्व काल में देखा जाए, बाबा तुलसीदास जी ने भी इतनी रामायण लिख दिया, रामचरितमानस लिखा है? लेकिन आज ऐसे विद्वान कम दिख रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया हो। है कहीं मिलता है, चाहे हिंदी साहित्य हो अथवा अंग्रेजी भी साहित्य में, शेक्सपियर आदि ने जो लिख दिए, उसमें कालिदास आदि ने जो लिख दिया, आज बताओ ऐसा लिखने वाला कोई विद्वान दिख रहा है क्या? चाहे इसी युग में हो, चाहे अपने भारत भूमि में हो, अथवा विश्व के किसी कोने में देखो जाए कि ऐसा नहीं लिख रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा है कि इस समय उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है, ऐसा महाराज जी ने बोला। उस समय उन ग्रंथों की लिखने की इस समय आवश्यकता है ही नहीं। इस समय विद्वता है, लेकिन इंटरनेट की विद्वता है, मोबाइल की विद्वता है, दुनिया की कोई चीज यहां बैठे बैठे बात कर लो, देख लो, विद्वता कम थोड़ी हुई है। यूं हवाई जहाज पर उड़ना शुरू कर दिए हैं लोग, फोन पे बात करना शुरू कर दिए हैं, तमाम है। तो तब मनोरंजन के साधन वो थे, साहित्य, कादम्बरी की कहानियां पढ़ते थे, रघुवंशम काव्य पढ़ते थे, लोग पढ़ करके अपने मन का रंजन किया करते थे। आज मन के रंजन के साधन क्या हो गए हैं, इंटरनेट और मोबाइल हो गए हैं। तो विद्वता कम नहीं हुई है, विद्वता का स्वरूप बदल गया है। हमें भी लगा कर बोल तो ठीक ही रहे स्वामी जी भी, लेकिन चिंतन किया कि ये मनोरंजन के जितने भी साधन विकसित कर ले में, इन ये सारे साधन मन को शांत नहीं करते हैं, बल्कि मन को और अशांत ही कर लेते हैं। 10 दिन आप देख लो तब भी आपको पता चल जाएगा। टीवी का कोई भी कॉमेडी सीरियल देखो, चाहे कपिल के साथ देख लो, चाहे जिसके साथ भी देख लो, कितने दिन आपको अच्छा लगता है सच बताना? 2-4 दिन अच्छा लगता है, इससे क्या लगता है, मन को वही चीज शांत कर देता है। हम कभी एक विषय से दूसरे, न्यूज भी आप सुनना शुरू कर दो, कितने दिन अच्छा लगता है? एक ही समाचार 10 बार बोर कर देता है। किसी भी विषय में आप जाओ, इसलिए रोज वहां बदलते जा रहे हैं। 10 दिन कोई विषय का एक खिंचाव रहता है, 10 दिन के बाद वह विषय फीका पड़ जाता है। 10 दिन के बाद सोचता है अब कौन सा विषय परोसूं कि लोगों को अच्छा लगे, और 10 दिन वो भी विषय चलेगा, 10 दिन के बाद वो भी विषय क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया था, वो ग्रंथ तत्काल उस काल में जितने उपयोगी थे, जितना सुख देने वाले थे, वो ग्रंथ आज भी उतने ही उपयोगी हैं और उतना ही सुख देने वाले हैं। बल्कि ये ग्रंथ तो ऐसे हैं कि ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल होए। जितना इसमें डूबते जाओ, जितना इसमें गहराई में घुसते चले जाओ, उतना ही आपको आनंद का आविर्भाव हो जाता है। और संसार के इन विषयों में, किन विषयों में, मनोरंजन के जितने भी साधन विकसित हो गए, उन विषयों में जितना डूबो, उन विषयों से उतना ही बीतिसंगा वैराग्य, उतना ही अशांति पैदा होती चली जाती है। तो बताओ कौन से विषय सार्थक हैं? हमारे महापुरुषों ने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया, चाहे गीता जी हो, चाहे योग वशिष्ठ होवे, चाहे कोई भी ग्रंथ होवे, उन ग्रंथों में जितनी सार्थकता और जितनी शांति उस क्षण मिलती थी, आज भी उस ग्रंथ में उतनी ही शांति और सार्थकता सिद्ध हो रही नहीं हो रही है। इसलिए जीवन में इन ग्रंथों का जो महत्व है, वह कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। महापुरुषों ने बड़ा उपाय करके सुख के साधनों को खोजने का प्रयास किया, तो सबसे बढ़िया सुख का साधन वेदांत ही मिला। तो महापुरुषों ने ग्रंथ तो बहुत लिखे, एक ग्रंथ है नृसिंह महाराज, इस ग्रंथ को लिखने वाले नरसिंह स्वामी हैं। कौन है? नरसिंह स्वामी। इस ग्रंथ का नाम है बोध सार, ज्ञान का पूरा सार है। और इसमें बड़ा आगे चल के इतना बढ़िया विवेचन है कि त्रिपुंड का क्या महत्व है। त्रिपुंड है ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान, तीन लकीरें हैं। किसकी? श्रद्धा की। श्रद्धा होगी तो भक्ति होगा कि नहीं होगा? जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति कैसे होगी? चिंतन और भक्ति बात क्या होगा? ज्ञान होगा। त्रिपुंड का क्या महत्व है? इसे शिव किया, कृष्ण की लीलाओं में भी बहुत कुछ वेदांत पर है कि इन्होंने चिंतन करके कितना मंथन करके लिखा। तो इसी में एक है सोजस्य अथ उपदेश सोजसिम, बीच में है 16 उपदेश श्लोक लिखे गए हैं, जो उपदेश सोजसी है, जिससे जीवन हमारा क्या हो जाए, सार्थक और सफल हो जाए। वह कौन से उपदेश हैं? पहला उपदेश लेते हैं, युक्तैव वृत्तिभिः पूर्णम् रिक्ति कुरु मनोघटम् न कश्चित् भविता तात ब्रह्मणा पूर्णे श्रमः। गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे शिष्य, वृत्तिभिः पूर्णम्, वृत्तियों से, विचारों से ठसाठस भरा हुआ इस मन रूपी घट को तुम खाली तो करो। जगत की विषयक हजारों चिंताओं को, लाखों चिंताओं को हम लोगों ने अपने इस मन रूपी घट में ठूस ठूस के भर लिए। ठूस ठूस के भरना मन्ने जानते ना, कूट कूट के भरना। जब कोई चीज आटा जब किसी बर्तन डालते हैं और बर्तन की सीमा थोड़ी सी कम होवे और आटा आपके पास ज्यादा हो तो क्या करते हो, दबा दबा के भरते हो, नहीं दबाते। तो हम लोगों ने अपने इस मन रूपी घट में विचार जगत रूपी, जगत के भोगों का, जगत रूपी विषयों की, व्यापारों को, चिंताओं को ठसाठस करके भर लिया है। और जब तक मन इन विचारों से भरा रहेगा हे शिष्य, तब तक तुम्हें शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए इन विचारों को रिक्ति कुर, इस मन रूपी घवे को, घवे से इन विचारों को निकाल करके क्या करो, बाहर करो। शिष्य कहता तो है, अच्छा निकाल के बाहर करने से भी फायदा क्या होगा? तो जैसे बताया कि कोई घड़ा होवे, घड़े में कोई चना आदि भर दो तो आकाश की उपलब्धि होती है क्या? आकाश में खाली जगह दिखती है क्या? लेकिन जैसे ही घवे के भीतर का जो सामान है उसको बाहर निकाल के फेंक दो तो बाहर से आकाश घवे में लाना पड़ता है, आकाश की उपलब्धि अपने आप हो जाती है। उसी प्रकार से इस मन रूपी घवे के भीतर ये संसार की सारी चिंताएं क्या है, भरी पड़ी हैं। और सारी चिंताएं भरी होने के कारण जो परिपूर्ण चैतन्य है उसका हमें एहसास अनुभव हो नहीं पा रहा, क्योंकि भरा पड़ा है सामान। क्या करो, अब क्या करना है, उस विचारों को क्या कर दो, एकदम हटा के बाहर कर दो। और जैसे हटा के बाहर करोगे तो उस चैतन्य के व्यक्ति अपने आप ही हो जाएगा। चैतन्य माने हुआ आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि उस आनंद को बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। वह आनंद तो आपका अपना स्वरूप ही है, लेकिन उस स्वरूप के ऊपर विषय रूपी जहर, विषय का इतना लेप चढ़ा हुआ है कि स्वरूप का हमें सुख आनंद मिल नहीं रहा है। अरे भाई देखो, कोई भी चीज बड़ी मीठी हो, मटरी है, अब उसका छिलका ही खाते रहो, छिलका खाते रहो तो कोई स्वाद आएगा क्या? अरे मटर को खाना है तो क्या करो, छिलके को बाहर फेंक दो और मटर को खा जाओ तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे हम लोग छिलके को ही खाते हैं। छिलके माने विषय के कड़वाहट का अनुभव करते हैं, विषयों की कड़वाहट के भीतर भरा हुआ जो चैतन्य है उसका हम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। कहते उसको हटाने में, अच्छा उस आनंद की प्राप्ति में कोई परेशानी तो नहीं है? कहते भाई उस आनंद को दूर जाके तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और आनंद तो नित्य पास से पास प्राप्त ही है। इन विषय को हटाओ वह तुरंत आपको मिल जाएगा, वह दुसंपाद्य नहीं है, सुसुखम कर तुम बड़ी आसानी से उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। बल्कि संसार को पाने में तो छीना झपटी है, मारपीट है, अशांति है, सब उसकी तरफ गिद्ध की तरह देख रहे हैं, कोई करा मेरे को मिल जाए, कोई करा मेरे को मिल जाए, कोई करा मेरे को मिल जा था। लेकिन अपने आप में बैठने में कोई अशांति है ही नहीं, वह तो सुसुखम कर तुम बड़ी आसानी से उसको कर सकता है। लेकिन इतनी आसानी से प्राप्त होने वाली चीज को न यदि कोई मिल जाए तो उस पर व्यक्ति को भरोसा ही नहीं होता है। इसलिए जब तक शरीर का तेल न निकाल दिया जाए ना, तब तक आदमी सोचता है मिला भी कोई मिला क्या। इसलिए बाबा लोग कहीं न कहीं लगा देते हैं, जाके यहाँ कर लो, यहाँ दौड़ लो, ये कर लो, ये कर लो। जब सब करके थक जाओगे ना तो तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वतः अपने आप ही हो जाएगी। दौड़े दौड़े, एक संतों ने लिखा है, दौड़े दौड़े दौड़िया जब लग मन की दौड़, दौड़ मिट्टी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। अरे जितने धक्के खाने ना दुनिया में, जितने मंदिर देखना हो, मस्जिद देखना हो, ताजमहल देखना हो, जितना काम करना हो, जितना भोजन करना हो, सब कर लो, कहीं शांति मिलने वाली है ही नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? आपको अपने भीतर ही स्वरूप में शांति मिलेगी। महाराज जी अनुभव में तो आता नहीं शांति, तो कहा सुसुप्ति में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? सुसुप्ति में। आप तो रोज जाते हो, नहीं जाते हो, तो उस समय सुसुप्ति में आपको सुख मिलता ही नहीं मिलता है, मुझे बता दो। कहो नहीं महाराज जी हमें सुसुप्ति में सुख नहीं मिलता। कई लोग बोल दे तो न सोना आज से बंद कर देना सोना। यदि आपको जहां सुख मिलता है उस सुख के भोग को भोगते रहना। जहां आपको सुख मिलता हो, चाहे खाने में, चाहे सुनने में, चाहे घूमने में, चाहे पहनने में, जहां भी आपको सुख मिलता है उसी को भोगते रहना। क्योंकि उसको यदि आपने छोड़ दिया ना, छोड़ के कहीं सोने चले गए, तो उस सुख के पदार्थ को कोई दूसरा उठा लेगा, तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं, चुपचाप उसको भोगते रहना। तो आप बताओ कितने दिन तक भोग सकते हो? नहीं, मुश्किल। और यदि उन विषयों में सुख होता तो कभी छोड़ने की इच्छा होती भी नहीं। सुसुप्ति में जो सुख मिलता है, अब बताओ उसको छोड़ने की इच्छा होती है क्या? सही बताऊं, सुबह जगने की इच्छा होती है क्या? 5 बजे जग जाऊं, बताओ क्या करूं? जाना पड़ता है प्रेमपुरी, इसलिए जगना ही है, ये है वो है। नहीं, सोने में जो मजा आता, सच बताऊं, हम तो 4 बजे जग जाते हैं। सही बता रहा हूं, 4:30 जग गए, लेकिन 3:30 जग करके भी लेके रहते हैं। बाक बढ़िया, ऐसा आनंद मिलता है कि भले नहाते 5 बजे है, लेकिन नहाने की इच्छा नहीं होती है। 4 बजे जग करके उसी शांति में इतना सुख मिलता है, उस सुख के विषय में तो कहना ही क्या। बताओ वो सुख किसका है? बल्कि दिन में तो बोझ भी हो जाते हैं, कहां झांक लेता हूं नीचे, कार और देख लेता हूं, या किसी का फोन सुन लेता हूं, लेकिन जब सोने के बाद जगता हूं तो इतनी शांति मिलती, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो वो सुख किसका सुख था? आपका अपना सुख था या किसी विषय का सुख था? अब आपका अपना सुख है, अब उस सुख में कोई विचार है क्या? विचार नहीं है, उस सुख में निर्विचार अवस्था में हो, इसलिए उस सुख की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भी कोई न कोई विचार चलता है, इधर स्वप्ने के बाद जब जगोगे ना तो शरीर थका थका सा दिखेगा, बड़ा हल्का नहीं दिखेगा, क्योंकि एक विचार ही आपको अशांत कर दिया है। और जैसे ही गहरी नींद में चले जाते हो, आप सारे विचारों से रहित हो जाते हो, और आपको उस समय जिस सुख की प्राप्ति होती है वह आपके अपने स्वरूप का ही सुख होता है। तो मेरे भाई उस सुख को पाओ ना, कब तक संसार में दौड़ते रहोगे, कब तक धक्के खाते रहोगे? अपने आप में बैठे बिना आपको शांति की प्राप्ति है ही नहीं। ये संसार के पदार्थ, संसार के भोग, संसार के विषय, ये तात्कालिक सुख से दिखते हैं, तात्कालिक सुख से दिखते, सुख है नहीं, सुख से दिखते हैं। और थोड़ी देर के बाद वही विषय जो कल तक सुख रूप दिखता था, वही विषय आपको दुख रूप दिख जाता है, वही विषय आपको अशांत कर देता है। इसलिए ऐसे विषयों का संसर्ग क्यों, ऐसे विषयों का चिंतन क्यों? हे शिष्य, इन वृत्तियों को, इन संसार विषय विचारों को तुम छोड़ो। और न कश्चित भविता तात, खाली कर दो, फिर न कश्चित भविता तात ब्रह्मगा पूरंगे श्रम, फिर ब्रह्म को, इस अंतःकरण को भरने में कोई श्रम करने की आवश्यकता, ब्रह्मगा पूरंगे श्रम है, ब्रह्म का भरने में न श्रम है, कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उस ब्रह्म की व्यक्ति, उस सुख की उपलब्धि आपको अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हटाओ तो महाराज, कैसे हटावे? ये बड़ी मुश्किल काम है। तो बताया युक्तिया एव, गुरु ने आपको कुछ न कुछ क्या दे दिया है, युक्तियां दी हैं, तरीके बताए हैं, उन तरीकों से उन पदार्थों को क्या करो, हटाओ। अब गुरु ने कौन कौन से तरीके दिए हैं, इस पे चर्चा आप लोग जानते ही जानते हैं। सारे तरीके मालूम नहीं मालूम है भाई? कहीं जाना है, कुछ करना है, तो संसार की प्राप्ति के लिए कोई न कोई तरीका तो है ना। तो अंदर के विचारों को हटाने के लिए भी गुरु ने कोई न कोई तरीका बताया नहीं बताया है। तो कौन से तरीके हैं? दो तरीके प्रधान हैं मन को विचारों से खाली करने के लिए। एक तरीका है मन को समझाओ। क्या करना है? मन को ही, क्योंकि मन में संसार विषयक महत्व बुद्धि संसार के लोगों ने बार बार कह कह करके डाल दिया है, और जिस विषय में सुख नहीं था मन ने उसी विषय को क्या मान लिया है? सुख मान लिया है, और बार बार उस विषय की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया है। तो इसलिए उस मन को वहां से क्या करना? हटाना है। तो बार बार उल्टा समझाना है, अथवा दूसरा है जिद पूर्वक। दूसरा कौन सा तरीका है? हठ पूर्वक। तो पहला जो क्रम से मन को हटाना है, क्रम से मन को हटाने में चार तरीके हैं। क्रम से मन को हटाने में क्या तरीके हैं? चार तरीके हैं। पहला तरीका है ब्रह्म अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। इस विद्या के बल से होगा क्या कि दृष्टा ही सत्य है, और जितना दृश्य जगत है सत्य सब मिथ्या है। अच्छा, संसार के विषयों में हम दौड़ते क्यों हैं? सुख के लिए। अरे पक्का निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों में सुख का भ्रम मात्र है, वास्तव में सुख की चीज है ही नहीं, तो क्या वहां दौड़ना शुरू करोगे क्या? भाई मृग मरीचिका का जल दिख रहा है, अब प्यासा से भी प्यासा व्यक्ति होवे जो उस जल के स्वरूप को जान गया है, तो क्या मटका लेकर के या कमंडल लेकर के उस जल को भरने जाएगा क्या? क्योंकि उसकी बुद्धि में पक्का ज्ञान हो गया है कि वहां जल जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में जल है ही नहीं। ऐसे ही संसार में सुख जैसा दिखता है लेकिन संसार में सुख की प्राप्ति है ही नहीं। ये बुद्धि मेरी निश्चय कर लो तो धीरे धीरे संसार का जो चिंतन है विचार है अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त तो हो जाएगा। इसके विषय में कई महापुरुष कई तरह की युक्तियां देते नहीं देते। आपने पिंगला का विचार सुना है? भागवत में किसका विचार है? पिंगला का। पिंगला अपने शरीर का व्यापार करके धन कमाती थी, शरीर को बेच करके। एक दिन सुबह से शाम तक इंतजार करती रही, उसके पास कोई पुरुष आया ही नहीं। जैसे हम अपने मन को समझाते हैं ऐसे पिंगला भी समझा रही थी। अच्छा हुआ पहला वाला नहीं आया, पहला वाला पुरुष थोड़ा गरीब दिखता था, ये वाला पुरुष जो आ रहा है ना अभी, बड़ी आशा के साथ शायद यह मेरे ही घर पे आएगा और मेरे ही पास आएगा, ये उससे धनी दिखता है, ये ज्यादा हमें धन देने वाला होगा। ऐसे जैसे हम अपने आप को समझाते नहीं रहते हैं, अच्छा हुआ एक काम नहीं हुआ, इससे बढ़िया कुछ भगवान को करवाना होगा तभी यह काम नहीं हुआ, और कुछ अच्छा मिलने वाला होगा। ये सब मन को हम समझाने के हजार तरीके ढूंढते रहे, शाम तक उसके पास कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तेगनो पिंगला सोचती है, हम इस तन को बेचते हैं किसके लिए? बोलो, धन के लिए। धन हमें क्यों चाहिए? सुख के लिए। ध्यान देना, धन हमें क्यों चाहिए? सुख के लिए। यही तो है तरीका। यदि धन से ही सुख होता, ध्यान देना, धन से ही सुख होता तो यह धन तो उन सेठों के पास है, पहले से उपलब्ध है। ध्यान देना, धन तो उन सेठों के पास पहले से उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है? अब वो धन उपलब्ध है तो यह धन से सुख होता तो उस धन से सुख तो खरीद सकते थे, लेकिन धन का त्याग करके वह सुख किससे चाहते हैं? मेरे से चाहते हैं। तो सुख न कहीं न कहीं मेरे पास है ही नहीं है? सुख न कहीं न कहीं, जब सुख मेरे पास है तो मेरा सुख मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? मेरा सुख मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? तो उस मेरे भीतर जो सुख है उस सुख को हमें थोड़ा खोजना चाहिए। तो अंतर्मुखी होकर के वह भीतर उस सुख को खोजना शुरू की, जैसे ही भीतर गई अब बाहर का चिंतन छूटा, उसको इतना आनंद की प्राप्ति हुई कि समाधि में स्थित हो गई। जब समाधि के बाद समय पाकर के जब बाहर हुई बहिर्वृत्ति हुई तो उसने कही आज तक मैं कितनी मूर्ख थी, सुख का ढेर सुख का सागर मैं स्वयं थी और सुख मैं खोजती रही कहां, उन पुरुषों के पास खोजती रही जहां सुख नाम की कोई चीज थी नहीं। फिर उसी समय कहते हैं कोई राजकुमार उसके पास आया और रुपयों की थैली दिया, लेकिन कहा अब जिस पिंगला के लिए तुम आए हो ना वह पिंगला मर चुकी है, अब वह पिंगला ऐसे काम करना बंद कर दी है, क्योंकि उसको अपने भीतर के शाश्वत सुख की उपलब्धि हो गई है। ये उस पिंगला की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। देखो हम अपने बाबा लोगों की क्या बताएं, हम सोचते हैं टुकुर टुकुर देखते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई धनपति हमें धन देगा दान देगा रसीद कटाएगा हम खुशी हो जाएंगे, सही बताओ हमें उससे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन कभी विचार करना उसको धन से यदि सुख हुआ होता तो धन का त्याग क्यों करता, उसको भी धन से तो वह धन क्या मेरे पास आ जाएगा मुझे सुख करेगा क्या, वो उसी की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। अभी इसी ग्रंथ में आएगा, अरे भाई अब तुम जवान हो चुके हो अब विवाह कर लो, कब तक व्यभिचार करते रहोगे, व्यभिचार माने संसार के विषयों में कभी शब्द के प्रति कभी रूप के प्रति कभी रस के प्रति कब तक घूमते रहोगे, एक शाश्वत पुरुष परमात्मा से जब तक आपका विवाह नहीं होगा जब तक आपको मिलन नहीं होगा तब तक आपको आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो युक्तिया युक्ति के द्वारा इस संसार के व्यभिचार को तुम छोड़ो, संसार के विषयों को छोड़ो और अपने उस शाश्वत सुख में आनंदित हो जाओ। क्या करें महाराज जी, शरीर का विचार तो चलता ही चलता रहता है। किसका विचार, शरीर का चलता नहीं चलता है महाराज जी, बुढ़ापे में क्या होगा ये बड़ी चिंता होती है। एक हम लोग पास माता आती थी, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि बुढ़ापे में किसी की सेवा लेनी न पड़े, कुछ न कुछ बुढ़ापे के लिए हमें चाहिए चाहिए। हम लोग भी क्या है महाराज, चिंता मत करो माता, आपका शरीर यूं छूटेगा ये हुआ वो हुआ, लेकिन फिर भी वो स्वाभिमानी जीवन जी है। कहते हैं कि छत पे थी योगा की और सुबह उठी योगा करने के बाद नीचे आई, उसको लगा शरीर मेरे छूटना है, चद्दर बिछाई हूं बैठी और चली गई। अब बताओ जिस बुढ़ापे के लिए चिंता कर रही है वह बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी है क्या। और एक बताऊं यदि सुख प्रारब्ध में होगा तो बिना धन बिना परिवार बिना किसी के भी सुख मिल जाएगा, यदि सुख नहीं होगा ना तो कुछ भी उपाय कर लो वो उन उपायों से आपको सुख मिलेगा नहीं। इसलिए शरीर जिस प्रारब्ध के अधीन होकर के जन्मा है ना, इस शरीर को उसके अपने उस प्रारब्ध का भोग भोगने दो, इस शरीर की ज्यादा चिंता मत करो। महाराज इस शरीर को तो थोड़ा बहुत सजाना संवारना पड़ता ही पड़ता है। कायम भूषयन्ति कनकई वसनई चंद्रई रपि अविचारत एवयम कायो रम्यत्वम आगत। देखो जिस शरीर को, अच्छा आप सच बताओ एक कोई कुशल पेंटर ने कोई तस्वीर बनाई हो है? अब उस पेंटिंग को कह दिया जाए कि इसको आप सुधारो तो सुधारोगे बिगाड़ दोगे, तो हमारी पेंटिंग को किसने बनाई है, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई पेंटर है क्या आजकल बताओ, कोई दूसरा पेंटर हो उससे बढ़कर के। एक हमारी पेंटिंग में तो एक पेंटिंग की कुछ न कुछ अक्ष कुछ न कुछ अंश दूसरे पेंटिंग में मिल जाएगी, तीसरे मिल जाएगी, हमारा क्या है प्रवचन होगा कुछ न कुछ दूसरे में तीसरे में मिल ही जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी पेंटिंग बनाई है, इतने करोड़ लोग हो चुके हैं अरब लोग, अभी इतने हैं आगे कितने होंगे, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठे से नहीं मिला, एक की आंख की पुतली दूसरी आंख की पुतली से, बताओ सबके स्वरूप अलग अलग हैं। और उस पेंटिंग को हम सुधारना चाहेंगे, सुधरेगी और बिगड़ेगी, तो हम अज्ञानता से ही इस पेंटिंग को अविचारता एवं कायो रमत्यम आगत। हम इन सब साधनों का उपयोग करके हम सोचते हैं इस काया को हम क्या बना रहे हैं, रम्य बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, अविचारता है। यह तो वास्तव में क्या है? अविचार ही है। अरे जिस देह को तुम सुंदर बनाना चाहते हो, कभी विचार करना। क्रव्याद अभक्षस्य किसानो ईंधनस्य च परिणामम अकृषस्य एव केन कायस्य रमता। हिंसक पशुओं का भक्ष है ये शरीर, को तो कौन खाएगा? हिंसक पशु ही तो खाएंगे। अग्नि का ईंधन है, बुढ़ापे में जर्जर हो जाने वाला है, इस देह में कहां सुंदरता है? लेकिन हमें इस देह की सुंदरता ही समझ में आ जाती है, देह से हम ऊपर उठ पाते ही नहीं है। ऐसे व्यापार की विडंबना है, काम की विडंबना है, लोभ की विडंबना है, क्रोध की विडंबना है। इन सारी वृत्तियों को तुम छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि जब तक अपने स्वरूप में तुम्हारी स्थिति होगी नहीं, तब तक तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी है नहीं। और भी कई युक्तियां हैं, तो पहली युक्ति क्या है? संसार के मिथ्यात्व का चिंतन। दूसरी युक्ति क्रम से थोड़ा महापुरुषों का साथ कर लेना। किसका साथ करना? क्योंकि जो चीज हमारे समझाने से आपको समझ में नहीं आती है, वही बात यदि किसी ऐसे महापुरुषों के साथ रह लोगे ना, तो रहने से उनका प्रैक्टिकल जीवन जब देखोगे ना, कि वो इन संसार के विषयों के बिना कैसे रहते हैं, तो हमारे अंदर भी एक आत्मबल मिलता है कि हम भी संसार के विषयों के बिना आसानी से रह सकते हैं कि नहीं। बल मिलेगा, हमारा खान प्यान पहना उठना बैठना यदि महापुरुषों का सीख लोगे, तो आपके जीवन में भी संसार का आकर्षण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। संसार का विचार निश्चिंतता अपने आप आपको आ ही जाएगी। कितने साधन हुए? दो। यदि इस पर भी स्थिति नहीं हो पावे तो तीसरा एक साधन है, विषयों में दोष दर्शन देखना। लेकिन यह बहुत अच्छा साधन नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी हम विषयों में इतना दोष देख लेते हैं, कुछ विषय से द्वेष हो जाता है, तो द्वेष से और चिंतन उसका चलता है, तो विषयों में इतने दोष देखना, कुछ विषय से मात्र राग हट जाए। क्या करना है? विषय में इतना ही दोष देखना है, कुछ विषय से क्या हो जाए? राग हट जाए। अन्यथा बहुत ज्यादा दोष दर्शन देखने की आवश्यकता है ही नहीं। एक महात्मा ऐसे, हम भी विषय में बहुत दोष देखते थे, लगता महाराज ये प्रवचन आदि करना बहुत अच्छा काम नहीं है, महात्माओं को तो क्या करना है? भजन करना चाहिए, है नहीं, चुपचाप अपने आप में बैठने चाहिए। अरे भाई सही बात, लगता तो अच्छा है, सैद्धांतिक रूप में हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन कितने क्षण तक भजन कर सकते हो? अब भूखे भजन में हो ही गोपाला, पांव में दर्द है, सर में दर्द है, फिर भजन करना शुरू करोगे क्या? अरे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ साधन तो चाहिए ही चाहिए। तो कई महात्मा लोग कई साधन अपना लेते हैं, और कोई दवाइयां का काम शुरू कर देता है, कोई ज्योतिष का काम शुरू कर देता है, कोई संगीत का काम शुरू करके अपना क्या करता है? जीविका चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इन सारी जीविकाओं के साधनों में से भी सबसे श्रेष्ठ साधन है अपना एक घंटा प्रवचन किया, दोपहर की रोटी की व्यवस्था पक्का हो गई, सांस के घंटे प्रवचन किया, रात की रोटी की व्यवस्था हो गई, अपने को कोई अशांति इस काम में नहीं है। तो अन्य कामों में तो कुछ न कुछ क्या है, देखो छात्री धर्म का अपना करोगे, छात्र धर्म में पराम हिंसा, तो हिंसा से भरा हुआ है। छत्रियों का व्यापार कोई आसान है क्या? अपनों की हिंसा करनी पड़ती है, अन्याय के खिलाफ दूसरे को करना पड़ता है। अच्छा ब्राह्मणत्व का जीवन मांगना, तो मांगने में भी बहुत बड़ा अनादर सहना पड़ता है, सही बताऊं? हाँ जीवन जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रवचन नहीं करें तो भी जीविका तो जी सकता है व्यक्ति, नहीं जी सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा, जा जाकर घर घर में, एक क्या होकर, एक सहनशाह होकर के, चाह गई चिंता मिट्टी मनमाल, फिर जाकर के गिर गए बाबू जी दो रोटी, नारांग दो रोटी, तो हमें सन्यासी बने हैं, वेदांत के ज्ञान अनुभवी बनते हैं, और फिर हम भिखारी बनने के लिए तो बाबा नहीं बने ना। लोग महात्माओं को क्या समझ लेते हैं, भिखारी समझते हैं। हम क्यों तुम्हारे सामने, क्या तुम दे सकते हो हमें, हम क्यों मांगे, अपनी अपनी दीनता की वृत्ति को कुत्ते के सामने हम क्यों दिखाएं, कुत्ते की तरह। कुत्ते कभी रोटी दूध क्या करता है, कुत्ता पूंछ उठाएगा, लेट जाएगा, अपने गुई अंग को दिखाएगा, और हाथी को बड़ा मान मनौती करनी पड़ती है, तब जाकर के वह आपके भोजन को स्वीकार करना पड़ता है। तो हाथी जैसे जीवन जियो ना, कुत्ते की तरह क्यों जीवन जीना है। तो मांगने में भी क्या है, बड़ी भारी दीनता ही है, बड़े भारी अनादर ही सहना पड़ता है। हट्टे कट्टे काम के न काज के दुश्मन अनाज के, हमें लोग बोल देते हैं महाराज जी आप लोग घर की जिम्मेदारियों से भाग गए इसलिए बाबा बन गए। अरे कोई फ्री में नहीं खिला रहा है, हम तो साहब कह देते हैं। एक प्रोफेसर भी प्रवचन दो घंटे देता है, लेक्चर देता है, तो 70,000-80,000 रुपए महीने वेतन पाता है, नहीं पाता। लेकिन वो विद्या किसकी खिलाता है, रोटी दाल की, और उसकी विद्या का तो कभी कभी कोई उपयोगिता भी नहीं दिखाई देती। इतिहास का प्रोफेसर, जागरसी का प्रोफेसर, ये प्रोफेसर, कोई उपयोगिता दिखती क्या, लेकिन फिर भी पा रहा है, नहीं पा रहा है। अब बाबा लोग 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बोल रहे हैं, उनको क्या, कोई वेतन नहीं। जो इसकी इच्छा होए न होए, कोई मांग नहीं, कोई दिमाग नहीं, देवे तो न देवे तो हर हाल में मस्त, जो मिल जाए उसने वो करते हैं संतोष। ये जीविका अच्छी, वो वाले जीविका अच्छी है। कहो महाराज थोड़ा व्यापार कर लो, कहते हैं असत्यम एवं वाणिज्यम, क्योंकि वाणिज्य में व्यापार में झूठ बोले बिना काम है? चले व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है, और झूठ बोलना भले किसी को दुख न देवे, लेकिन कहते न अंधतात पातकम परम, झूठ से बढ़कर के दूसरा कोई पाप होता ही नहीं है। महाराज जी आश्रम में जाकर सेवा कर लो, आश्रम में जाकर के, बड़े बड़े आश्रमों में जाकर क्या करो, सेवा करो। सेवा से उस आश्रम का मठाधीश आपको रोटी तो खिलाएगा। कहते सेवा धर्म इतना आसान भी नहीं है, सेवायाम परमम कष्टम, सेवा भी बहुत बड़ा क्या है, कष्ट है। कहो महाराज सबसे बढ़िया जीवन तो किसान का होता है। कहते मृत कीटस्तु किसी वाला है, किसान बेचारा तो मिट्टी का एक कीड़ा ही है, उसके द्वारा भी कितने जीवों की क्या हत्या होती नहीं होती है। अरे जब गन्ने की खेत को करते हैं, आग लगा देते हैं बाद में उसके उसमें, और फिर कितने कीड़े उसमें क्या होते हैं, जिंदा जल जाते हैं। हल जोतता है तो कितने कट्टे मरते हैं, वो भी बड़ा दुखदाई है। थोड़ा लाठी लगा लो, लाठी माने जुआ खेल लो, दुईते सर्वस्व नाश है, जुआ में तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नाश ही हो जाएगा। थोड़ी बहुत चोरी कर लो तो चोरी करने में राजा का भय है, तो क्या करें, खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कहते न आकाशात पतति द्रव्यम, आकाश से कोई दाल चावल तो टपकेगा है ही नहीं, तो बताओ जीविका सुखप्रद कैसे हो सकती है। तो सुखप्रद जीविका के लिए, शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितना सहज कर्म होवे उतना सहज कर्म कर लेवे, जिससे शरीर का निर्वाह मात्र हो जावे, अंतः शरीर के निर्वाह की बहुत चिंता करके व्यापार का बहुत ज्यादा विस्तार न करे। ठीक है भाई, क्योंकि भाई खाना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करे, इसलिए सहज कर्म जितना आसानी से हो जाए है ना। कई लोग हमने बहुत मिले, एक वहां था क्या घाट कोपर में दीन बंधु करके है एक आदमी, वो भी टैक्सी चलाता है। कहता महाराज 500-700 रुपए हो जाते हैं, जैसे ही हो गया चुपचाप गाड़ी ले आकर रख देता हूँ, अब बहुत नहीं कमाने की आवश्यकता है, अपना गुजारा चल गया, अब क्या करूंगा ज्यादा हाय तोबा करके। तो जितने में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उतना करके चाप चाप अपने शांति स्वरूप उस आत्मा में रहने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक, और भी कई युक्तियां हैं, आपको जो समस्या हो आपकी अपनी युक्ति से अपने तरीके से भी वो समस्या का हनन न हो रहा हो तब मेरे से पूछ लेना कि महाराज ये विचार मेरे को बार बार परेशान कर रहा है, ये विचार अंदर से जाता है ही नहीं, उसको हम कैसे हटाएं। तो हटाने का कोई न कोई सहज तरीका है, तो इतना तरीका पहले बता दिया हूं, तो बताओ हम कितने तरीकों को बताऊंगा आपको, है नहीं। कितने तरीके बता गए, इसको पढ़ाने में ही कम से कम कितना महीने लग जाएगा, 2-3 साल तो लग ही जाएगा। इसलिए जितना आवश्यकता है सारे महापुरुष कोई न कोई तरीका, कोई न कोई युक्ति तो बता ही देते हैं, का निश्चिंत हो जाओ। त्यज चिंता महाबुद्धे भज निश्चिंतता सुखम, त्वया अर्जितामिमां चिंताम वद को अन्य परित्यजेत। त्यज चिंताम महाबुद्धे, देखना गुरु भी शिष्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कहते महाबुद्धिमान, हे महाबुद्धिमान शिष्य, त्यज चिंताम, इस चिंता को तू छोड़ दे। किस चिंता को? जगत विषयक चिंता को छोड़ दो। इस संसार में तुम्हारे किए कुछ बनता बिगड़ता तो है ही नहीं। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि जगत को बनाने वाला जगत की चिंता को कर लेगा, जगत को चला लेगा, नहीं कर लेगा। अच्छा आप खुद सोचो, मनुष्य कितनों की चिंता करता है? केवल अपनी चिंता करता है, और किसी करता है? अपनी या केवल मनुष्य की चिंता करता है? ये मान लो कीट पतंगा पशु पक्षी घास तिनका किसी की चिंता करता है क्या बताओ? यदि मनुष्यों की चले तो खेत में कोई घास होने न देवे। क्यों भाई? किसान लोग देखना गर्मी में खेत जोत देते हैं कि घास की जगह सूख जाए, फिर निकाल करके उसको जला देता है, लेकिन फिर भी घास कहीं कहीं से पैदा हो जाती है। अब घास को दोबारा पैदा करने वाला कौन है? यदि वो घास दोबारा पैदा होवे ही ना तो कोई पशु जीवित रहेगा क्या? उस घास से भी कितने पशुओं की जीविका चलती है कोई पता है क्या? एक मैंने एक दुर्वासना प्रतिकार दशक में एक पुस्तक लिखी थी, उसमें कहानी बहुत बढ़िया लिखी थी कि एक व्यक्ति था, राजा था, उसके खेत में ज्वार बाजरे की खेती होती थी उस क्षेत्र में, तो पक्षी आधा भाग चुग जाते थे। क्या चुगते थे? पक्षी खा जाते थे। तो राजा को बड़ी चिंता होती थी, हमारे किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना खून पसीना एक बहाते हैं, और 25-30% तो कौन खा जाते हैं? फालतू ये पक्षी खा जाते हैं, इनकी कोई उपयोगिता तो हमें दिखाई देती नहीं। तो कहा इन पक्षियों को मरवा दो जिससे सारी फसल सुरक्षित रहे हमारे। राजा ने बहेलिया को बुला करके सारे पक्षियों क्या किया? मरवा डाला। देखो ना, पशु पक्षियों को भी इतनी अकल होती है कि जब वो देख लेते हैं कि इस राज्य की सीमा में मेरी जान का खतरा है तो पशु पक्षी उस राज्य में घुसते ही नहीं, तो उन पक्षियों ने भी उस राज्य में घुसना बंद कर दिया। इतनी अकल होती नहीं होती है, हमने देखा है भाई। देखो पशुओं को खतरा जिससे नहीं होता, देखो उसके कंधे पे बैठ जाएंगे, हाथ से ही रोटी खा जाएंगे, और जिससे खतरा है आदमी खतरनाक है, वो मन के भाव को पकड़ लेंगे, उसके पास जरा सा भी आते है नहीं, तो उस राज्य की सीमा माने ही बंद कर दिए पशु। राजा बड़ा खुश होगा कि अब हमारी फसल 100% हमारे किसानों को मिलेगी। अगले साल किसानों ने बीज बोया, अब बीज बोने के बाद बड़ा इंतजार था, फसल होगी, 100% फसल होगी, हमारी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। राजा बुला के किसानों से पूछा, इस साल तो फसल ठीक है? कहा महाराज, इस साल तो अंकुर नहीं फूटे। राजा बड़ा चिंता हुआ, क्या हुआ आखिर? तब तक कोई महात्मा आया, कहा महाराज, आपने जो पक्षियों को मरवा करके बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। पक्षी भले आपकी फसल का 25-20% खाते थे, लेकिन उसके साथ साथ जब खेत जोतते थे ना, तो कितने कीड़े जमीन में होते हैं, उन कीड़ों को भी कौन खाता था? वो पक्षी खा जाते थे, और कीड़े जमीन के भीतर ही रह गए, अब बीज को ही जमीन के भीतर ही निकल गए, तो अंकुर कहां से फूटेगा बताओ? तो इसलिए सृष्टि में हर एक जीव की कहीं न कहीं कोई न कोई उपयोगिता है, लेकिन मनुष्य इस चीज को समझता है नहीं। मनुष्य समझता है कि सारी दुनिया में मनुष्य ही रहे और दूसरे कोई जीव रहने ही न पावे, तो बताओ क्या मनुष्य जीवित रह सकता है क्या बिना किसी दूसरे जीवों की सहायता के लिए, सहायता के बिना रह सकता है? इसलिए इस संसार को बनाने वाला, संसार की चिंता भर सक, रमन महर्षि के पास कोई आके कहा, महाराज आप जैसे सारे बाबा हो गए ना तो दुनिया का क्या होगा? आप जैसे कोई शादी न करे, सब बाबे बन गए, तो दुनिया का क्या होगा? रमन महर्षि तो बहुत सीधे साधे महात्मा थे। उनका बात दुनिया ने कभी आकर के तुम्हारे सामने कहा है क्या, तुम नहीं शादी करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए तू शादी कर ले। कभी संसार ने आकर के तुम्हारे सामने कहा क्या? अरे संसार को बनाने वाला संसार की चिंता भी कर ही लेगा, इसलिए इस जगत की विषय जगत विषयक चिंता को तुम क्या करो, छोड़ो। इस जगत में तुम्हारे किए कुछ बनता नहीं है, बल्कि इस जगत में तुम जितना बनाना चाहते हो जगत उतना ही बिगड़ता चला जा रहा है, उतना ही अशांत होता चला जा रहा है। तो क्या करें, भज निश्चिंतताम सुखम, जहां पर कोई चिंता है ही नहीं, जहां कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं, अपने उस स्वरूप सुख का ही तुम चिंतन करो, उसी में ही जाने का प्रयास करो। ये संसार तो अपनी गति से ही चलता रहेगा, संसार अपनी चिंता अपने आप ही कर लेगा, अपना समाधान अपने आप ही निकाल लेगा। त्वया अर्जिताम इमाम चिंता, अरे भाई त्वया अर्जिताम इमाम चिंता, इस चिंता को तूने ही अर्जित किया है, तूने ही प्राप्त किया है, तूने ही इकट्ठा किया है, तूने ही कमाया है। बद को अन्य परित्यजेत, जब तूने इसको कमाया है तो तेरे अलावा बताओ कौन इसको छोड़ने वाला होगा। तुम आप लोग कहते हो गुरु जी आप निकाल दो, भगवान आकर के निकाल देंगे, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति निकाल देगा, तो दूसरा व्यक्ति कोई निकालने वाला है ही नहीं। आपने खुद कमाया है और खुद कमाई हुई वस्तु को जो इकट्ठा किया है तो इस ढेर से आप ही उसको बाहर निकाल सकते हो, दूसरा कोई निकालने में सहयोगी, हाँ दूसरा युक्ति तो बता सकता है, क्या कर सकता है, जिस प्रकार की चिंताएं आपके भीतर समाई पड़ी हुई हैं, उन चिंताओं को हटाने के लिए दूसरा व्यक्ति कोई न कोई उपाय तो आपके सामने कर सकता है, बता सकता है, लेकिन उस चिंता को हटाने का उद्यम परिश्रम प्रयास तो किसको करना पड़ेगा, आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति कैसे करेगा। इसलिए आपके द्वारा कमाई गई इस चिंता को भला बताओ तुम्हारे द्वारा और कौन सा व्यक्ति है जो इसको छुड़वा सकता है। हाँ दूसरा छूटने का उपाय बता सकता है, युक्तियां बता सकता है, तरीके बता सकता है, लेकिन उस काम को करना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। चिंतनीयम त्वया वस्तु चिंता रोगस्य भेषजम अथवा तात चिंताक्षम रोगम एव परित्यज। चिंतनीयम त्वया वस्तु चिंता रोगस्य भेषजम, कहते चिंता रोग की एक दवाई है। कौन सी दवाई है? उस ब्रह्म का स्मरण करो। ध्यान देना, उपाय मैं बता रहा हूं। पहला उपाय चिंताओं को दूर करने का पहला उपाय अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। दूसरा उपाय साधुओं का साथ कर लेना। तीसरा उपाय थोड़ा सा दोष से दृष्टि कर लेना। ये सब याद करना बहुत काम की चीजें हैं भाई, और कहीं किसी से काम चल जाता है, कहीं किसी से काम चल जाता है। भाई देखो, कहीं तलवार कपड़ा काटना है तो किससे काम चलेगा? कैंची से। कहीं ब्लेड लगाना पड़ता है किसी काम के लिए, कहीं सुई से काम चल जाता है, कहीं चाकू से। अब कैंची से सेब काटना हो तो थोड़े काम चलेगा, उसके लिए तो क्या चाहिए? चाकू चाहिए। अब कांटा निकालना हो तो सुई चाहिए, वहां चाकू अथवा और कोई काम थोड़े कर सकता है। तो ऐसे किसी विषय की आसक्ति को अध्यात्म ज्ञान मिथ्यात्म निश्चय करके कर लेना। किसी विषय की आसक्ति को थोड़ा महापुरुषों की साथ से कर लेना दूर। किसी विषय की आसक्ति को दोष दर्शन देके कर लेना। लेकिन और भी ना उपाय समझ में आवे तो एक चौथा भी बहुत बढ़िया उपाय है। तो जब संसार की चिंताएं नहीं मिट रही हैं, तो उस चिंताओं को हटाने की एक दवाई है, उसमें एक बड़ी चिंता और डाल दो। क्या? ब्रह्म चिंतन शुरू कर दो। किसका? ब्रह्म चिंतन शुरू कर दो, तो संसार की चिंता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। देखना गांव में व्यक्ति होते ना, कभी कभी किसी का बच्चा आवारा है, इधर उधर गलत काम सब करता रहता है, सुधरने का माँ बाप लाख प्रयास करते हैं, जब नहीं सुधरता है तो माँ बाप कहते इसकी शादी कर दे। गांव में कहते हैं इसकी क्या कर दे, शादी कर दे, अपने आप सब सुधर जाएगा। क्योंकि शादी जैसे करेगा तो सारी चिंताएं समेट के कहां जाएगी, पत्नी के खाने की चिंता, पिलाने की चिंता, घुमाने की चिंता, यहां जाना वहां जाना, ऐसी चिंताओं में डूब जाएगा कि अन्य सारी चिंताएं अपने आप क्या हो जाएंगी, सिमट जाएंगी। ये तो संसार की चर्चा है, लेकिन यहां भी इस संसार की चिंता यदि नहीं छूट रही है तो किसकी चिंता शुरू कर देना, उस परमात्मा का चिंतन करना शुरू कर दो। तो उस परमात्मा के चिंतन करने से संसार का चिंतन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। चिंता रोगस्य भेषजम, चिंता रूपी रोग की यह भी सबसे बड़ी दवाई है। अथवा तात चिंताक्षम रोगम एव त्यज, अथवा हे तात इस चिंता रूपी रोग को तुम दूर से ही जिद पूर्वक छोड़ दो। अगला तरीका हट से, क्या करना, हट से, कुछ भी हो जाए, कोई मरे कोई जिए, हमें इसके बारे में सोचना है ही नहीं। कुछ दिन तो उसकी याद आएगी, लेकिन जब उसका चिंतन करना धीरे धीरे एकदम बंद ही कर देंगे ना, तो थोड़े दिन के बाद अपने आप उसकी याद ही समाप्त तो हो जाएगी। तो क्या करना, हठ पूर्वक भी इस रोग को आप दूर कर सकते। जिद पूर्वक देखे ना, कोई फुंसी हो जाए, क्या हो जाए, फुंसी हो जाए, तो फुंसी होते ही कोई व्यक्ति दबा करके उसके मवाद को यूं करके निकाल देता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पूरी चिंता का बीज अंकुर होते ही उसको जीत पूर्वक कितना भी अच्छी चीज होवे उसको तोड़ के जो फेंक देता है, वही उस स्वरूप गत स्वस्थता का सुख ले सकता है। तो आपको स्वस्थ होना ही होना है, तो स्वस्थ माने यूं वाला स्वस्थ नहीं, स्वस्थ माने अपने आप में स्थित होकर के परम यदि सुख को देना है तो चिंता रूपी रोग को दूर करता है। इस चिंता में और कैसे दोष है और कैसे उसको दूर करेंगे, इस पे चिंतन हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। और सायंकाल भाई बड़ा बढ़िया प्रसंग चल रहा है, वो सायंकाल करें। ये स्वाध्याय में भी जिसको टाइम, देखो हम तो कहते हैं प्रेमपुरी आश्रम की बड़ी उदारता है, मानो न मानो, कि कहीं कहीं सुबह कथा होती है स्वाध्याय और शाम को होता है प्रवचन। बंबई में सब जगह पे ये नियम है, चाहे अंधेरी हो चाहे घाट को पर हो चाहे वासी, सब जगह सुबह क्या होगा, प्रवचन, शाम को नहीं, सुबह स्वाध्याय और शाम को प्रवचन होगा। तो आओगे जाओगे कितने बार किराया खर्चा होगा,
दो बार
सोचना, महंगा नहीं पड़ता। अब यहाँ तो ईश्वर की ऐसी कृपा, एक ही बार आ जाओ 7:30 बजे, अब पूरे कितने बजे जाओ 9:30 बजे चले जाओ, 7:30 दो घंटे, एक बार के किराए में दोनों काम हो जाएगा, दो घंटे आपको मिल जाएंगे, फायदा ही नहीं फायदा है बताओ, नहीं तो कितनी दूर से कैसे आओ, क्या समस्या, नहीं समस्या है। सायंकाल भी स्पिरिचुअल सेंटर में चल रहा है, बहुत बढ़िया विषय चल रहा है, मांडू की कारिका, जिसको राम ने हनुमान जी को बताते हुए खुद बोल दिया कि जीवन में ज्ञान पाना हो तो एक ही उपनिषद पर्याप्त है, वह है मांडू की, मांडू की पढ़ लो उद्धार हो जाएगा। यदि एक न समझ में आवे तो 9 पढ़ना, 9 न समझ में आवे तो आगे सब कुछ विस्तार करना, लेकिन एक में ही सब कुछ है। तो वो चल रहा है, जिसको समय मिल जाए, मैं नहीं कहता कभी कभी किसी को सुबह एकदम ना ही समय मिलता तो कब आ जाए,
शाम
को जाए, अवसर है। हम तो कहते हैं इसको खो नहीं, खो गए तो सही बताए, एक वृत्ति बनती है सब सुनने की सुनाने की पढ़ने की पढ़ाने की, हम तो वृत्ति चली गई तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चुड़िया चुग गई खेत, ऐसी वाली अवस्था मत आना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।